बहुत समय पहले एक यात्री जहाज की यात्रा पर गया। वो व्यापार करता था और समुद्र यात्रा में ऐसा तूफान आया कि उसकी नाव जहाज डूब गया, सब कुछ तहस नहस हो गया और ऐसे जैसे स्वयं को बचाते हुए तैरते हुए वो एक टापू पर पहुंचा। वो टापू निर्जन टापू था, वहां कोई नहीं था। सुबह से लेकर रात तक ढूंढता रहा, भटकता रहा, कोई मनुष्य मिल जाए, कोई आवाज, कोई पक्षी, कोई पंछी, कोई परिंदा, परंतु कोई नहीं था। अकेला भटकता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता था। वो भक्त था, भगवान की पूजा करता था, आराधना करता था, प्रभु को याद करने लगा। जब कोई न मिला, दूसरा दिन इसी तरह भटकता रहा और ना ही कोई दूर से कोई जहाज, नाव, नौका, कोई बोट, कुछ नहीं। दूसरा दिन भी भटकता रहा, तीसरा दिन फिर भटकता रहा, भटकता रहा। भगवान पर उसका जो निश्चय, जो फेथ, जो श्रद्धा, जो विश्वास था, थोड़ा थोड़ा कम होने लगे। कितनी मैंने तेरी पूजा की, कितनी मैंने तेरी प्रार्थना की, कितना मैंने तुझे पुकारा और क्या कुछ नहीं किया, कितने पुण्य किए, परंतु आज इस घड़ी में, इस समय कहां है तू? आर्त तो पुकार उठने लगी रहने से, परंतु कोई जवाब नहीं। एक हफ्ता बीत गया, तब तक विश्वास जो था पूरा पूरा टूटने लगा। एक महीना बीत गया और अकेला उस टापू पर भटकता रहा। खाने के लिए कुछ नहीं, वहां के कंदमूल फल खाकर जीवित रहता, पुकारता, देखते रहता, परंतु कोई जहाज कहीं से नहीं। 3 मास बीत गए अकेला। तब तक कट्टर नास्तिक बन चुका था, भगवान पर जो विश्वास था पूरा समाप्त हो गया। और कब तक ऐसा रहे? अंततः उसने सोचा, कब तक खुले आकाश में इसी तरह सोता रहूं, क्यों ना एक झोपड़ी बनाऊं। और यहां वहां से झिलाड़ के पत्ते, पांव, डालियां एकत्र कर एक झोपड़ी बनाते हैं। पहली बार थोड़ी खुशी होती है कि इतनी रातों के बाद पहली रात है जो सिर पर छत होगा। और अचानक मौसम बदलता है, अचानक वर्षा होने लगती है, आकाश में बिजली कड़कती है और एक बिजली आती है और उसके झोपड़ी पर गिरती है और झोपड़ी को आग लग जाती है। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता हुआ बाहर निकलता है, अपना सिर जमीन पर पटकता है और पुकारता है, हे प्रभु, क्या यही तेरा इंसाफ है? क्या तू वही है जिसे दयालु और कृपालु कहा जाता है, बिना कारण और गुणार्थ कृपाला, बिना कारण कॉजलेस मर्सी कृपा करने वाला तू ही दया सिंधु है? क्या यही तेरी दया है? क्या यही तेरी कृपा है? अचानक दो व्यक्ति भागे भागे उस टापू पर आते हैं और उससे कहते हैं कि हम जन्नत से कहीं जा रहे थे और अचानक हमने आग देखी इस टापू पर और हम तो लगा कि कोई यहां है। अच्छा किया जो तुमने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी, नहीं तो हमें पता कैसे चलता है कि यहां कोई है? हम तो यहां से निकल जा रहे थे, अब हम तुम्हें बचाने आए हैं, चलो हमारे साथ। तब वो भक्त जो अब नास्तिक बन चुका था उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगता है, माफी मांगने लगता है कि हे प्रभु मैंने ये क्या समझ लिया था, मैंने ये समझा था तू मुझे भूल गया, पर तू मुझे कभी नहीं भूला था। इस परीक्षा की घड़ी में जो यहां हुआ वह चमत्कार था। इस जीवन में भी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हर बात में कल्याण कहीं ना कहीं समाया हुआ है, उसकी नजर हम पर है और हम उसकी छत्र छाया में चल रहे हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर ये समझना, ये सोचना, ये मानना कि जो हो रहा है वो ईश्वर जो राम रच रखा, जो उसने रचा है वो हो रहा है और उसी में परम कल्याण है, और वो जो कहता है, वो जो बातें बताता है, जो उसके श्रीमत डायरेक्शन मत ऑर्डिनेंस ऑर्डर सलाह एडवाइस सजेशन सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। और उसकी एक श्रीमत है, उसका दिया हुआ एक समान है, तुम ज्ञान की बुलबुल हो और तुम्हें सारे दिन भर क्या करना है, टिपलू 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 करते रहना है। कौन से पक्षी हो, कौन से पंछी हो, पिंजरे वाली मैना हो या उड़ता पंछी हो, कई बार मुर्गियों में प्रश्न आता है। पिंजरे वाली मैना अर्थात बंधन अर्थात दुख, बंधन युक्त जीवन दुखदायी जीवन है, गुलामी का जीवन, स्नेह का जीवन सबसे लोएस्ट नीच जीवन है। हमें मुक्त पंछी बनना है। आज की इस मिट्टी में यह समझना कि मैं ज्ञान की बुलबुल हूं और मुझे क्या करना है, टिपलू टिपलू करते रहना है। भगवान का ज्ञान बहुत रमणीक है, अटपटा खटपटा और चटपटा, ये चौक चीनी है, ये ज्ञान का वखर है। बाप तुम्हें चोचो का मुरब्बा खिलाते हैं, मुर्गियों में अलग अलग शब्द आते हैं, ये हलवा है गरम गरम गोभी। तो ऐसी हम ज्ञान की सभी बुलबुल हमें सात प्रकार के सारे दिन भर टिकलू टिकलू करते रहना। सबसे पहली ज्ञान की टिकलू टिकलू, ज्ञान की टिकलू टिकलू करना अर्थात निरंतर ज्ञान का मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, चर्चा करना, बात करना, लिखना, उसकी गहराई में जाना, एक एक पॉइंट को अपने जीवन में ऐसे धारण कर लेना कि उसका नाम स्वरूप बन जाए। ये सबसे पहला काम हरेक को करना है। सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली नोट करना और वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। सेंटर पर गए, डायरी खोली, बैठे बच्चे, लिखा, फिर प्रश्न लिखा, फिर गीत लिखा और फिर डायरी बंद हुई और उसके बाद डोलना चालू हुआ बीच बीच में, बीच बीच में नींद, और बीच बीच में आंख खुली और जैसे ही हुआ मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति फिर से आवाज, फिर से जागरण और फिर से डायरी खोली और फिर से फटाफट लिखा, धारणा के लिए सार एक, धारणा के लिए सार दो, वरदान स्लोगन, डायरी बंद, आज का काम पूरा हुआ। फिर सेंटर से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया कहीं आकाश में, सेंटर के गेट से बाहर निकलते निकलते प्रश्न गया कहां गया पता नहीं, घर पहुंचते पहुंचते वरदान उड़ गया, नाश्ता बनाते बनाते स्लोगन उड़ गया, शाम होते होते मुरली उड़ गई और फिर शाम को कोई पूछता है मुरली कैसे थी, बहुत अच्छी थी, तुम क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, आज बहन जी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, पर था क्या वो मत पूछो क्या था, क्योंकि जो था बहुत अच्छा था, पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो क्या था। एक एक वाक्य, एक एक पॉइंट जो मुरली में थे महावाक्य। गोपियां श्री कृष्ण से कहती है भागवतम में, तब कथाम मृतम, हे गोविंद हे केशव हे माधव, तेरे जो मुख से बरस रहा है, गिर रहा है, जो रस धार बह रही है, कथा की अमृत है, तेरे वाक्य अमृत है, तप्त जीवन, हमारा जीवन तप रहा है, इस तपते हुए जीवन में तेरे मुख से जो निकल रहा है वो अमृत है, शीतल करता है चित्त को मन को, ज्ञान के टिकलू टिकलू करने उठना, ज्ञान केवल सुनना नहीं, ज्ञान केवल सुनाना नहीं, क्या करना, रंग जाना। दो शब्द है, एक है सोचना, एक है चिंतन मनन करना, सोचना अर्थात तैरना, मनन करना अर्थात डूबना, क्या करेंगे, तैरेंगे ऊपर ऊपर या डूब जाएंगे, डरना नहीं है, क्योंकि ये सागर अनंत का सागर है, इसमें जो डूबेगा वो और ही अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि ज्ञान अनंता, जैसे वो अनंत है ऐसे हम अनंत होंगे, और आत्मा अनंत है और अनंत की तृप्ति केवल अनंत से होगी, संसार के भोग विलास वासनाएं, संसार के वैभव संसार की धन कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कमा लो, चाहे कितना भी भोग लो, कितना भी खा लो, कितना भी कुछ भी करो, आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की प्यास अनंत की है, केवल सच्चित आनंद ही उसे तृप्त कर सकता है। तो ऐसे ज्ञान की गहराई में उतरना है, शब्द शब्द लेना, वाक्य वाक्य लेना, उसकी गहराई में चले जाना। आज की मम्मा की मुरली साधारण से शब्द है, पर कितना डेप्थ, कितनी गहराई है उसमें, वाक्य वाक्य में। माया की कैसी परिभाषा मम्मा दे रही, माया संसार नहीं, माया व्यक्ति नहीं, माया धन नहीं, विकार, जब इन तीनों में प्रवेश कर जाते हैं तो ये तीनों ही माया बन जाती है, वो धन माया नहीं है, परंतु विकार अगर उसमें प्रवेश कर जाए तब वो माया है, वो व्यक्ति वो स्त्री वो पुरुष माया नहीं, परंतु जब विकार उसमें प्रवेश कर जाए तब माया है, ये संसार माया नहीं। संन्यासियों ने कहा है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, मिथ्या इसलिए है क्योंकि झूठ है, बाकी ये संसार सत्य है, परंतु हां जब इसमें माया प्रवेश कर जाए तब ये सत्य अर्थ है मिथ्या। मम्मा को एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग ज्ञान का ऐसा एक एक शब्द के वाक्य के गहराई में चले जाना, अर्थात क्या करना, ज्ञान के टुकड़ों टुकड़ों करना। इसके लिए आप सभी को एक काम कल से रोज करना है, जो भी मुरली चलेगी उसमें से 5 टॉपिक्स निकालने हैं। मुरली बहुत निकली, अब टॉपिक्स निकालो और सारे दिन भर उसके ऊपर चिंतन करो। जैसे आज की मुरली से ज्ञान का तीसरा नेत्र टॉपिक है, इसके विषय में पहले ये सोचो बाबा ने अब तक क्या क्या कहा, हम क्या सोचते हैं, फायदे क्या है। ये नेत्र बंद कब होता है और नेत्र खुलता कब है, उसमें भी अपने जीवन से कि मेरे ज्ञान का नेत्र जीवन की किस किस परिस्थितियों में बंद हो गया। तीसरा कोई आया तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद, एक बाप दूसरा न कोई, तीसरा आते ही नेत्र बंद हो गया, तीसरे में मोह जाते ही नेत्र बंद हो जाएगा, तीसरे में आसक्ति होगी नेत्र बंद हो जाएगा, देह किसी का बीच में आ जाएगा नेत्र बंद होगा। जहां देह में लास्ट संडे की मुरली, वहां कौन बताएगा, लास्ट संडे की मुरली जहां देह में वहां बहुत पावरफुल वाक्य विकार है, जहां देह में बना विकार है। एक टॉपिक निकालो, सारे दिन भर चिंतन करो, चिंतन की धारा से बुद्धि को प्रखर करना है, शार्प बनाना है। केवल सुनते गए तो भक्ति मार्ग है। उधर भी कहते थे सत्वचन महाराज, इधर मुरली क्लास में भी सत्वचन महाराज, उधर भी हाजी हाजी, इधर भी हाजी हाजी। हाजी बहुत अच्छा पार्ट है, परंतु ज्ञान के समझने को समझने के लिए मन में प्रश्न आए, ये क्यों कहा गया, इसका क्या अर्थ है। बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख कौन सी गाय देती है, जो जुगाली करती है, जो उगाड़ती है, जो गाय जुगाली नहीं करती वो कौन है, बीमार। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार। बीमार कौन कौन है, हाथ खड़ा करिए, बीमार बीमार। जो विचार सागर मंथन नहीं करते वो बीमार है, खुद ही समझ लेना मैं स्वस्थ हूं या रुग्ण हूं। विचार करना है, विचार चिंतन चलाना है, ये क्यों वो क्यों ये ऐसा क्यों कहा मम्मा ने, क्या राज है इसमें, विजडम किसे कहा, विजडम क्या होता है, सोचना है। ये पहला, दूसरे टुकलो टुकलो पवित्रता के टुकलो टुकलो, सारे दिन भर मन में शुद्ध संकल्प चले, वो कौन से कारण है, वो कौन से स्टिमुलस है, वो कौन से उत्तेजक है जो मन में आंधी और तूफान की तरह आते हैं और अपवित्र विकार के वासना के संकल्प चालू होते हैं, वो सारे ट्रिगर्स, वो सारे स्टिमुलस सबको बंद कर देना। वो टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो पोस्टर हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो जो हमारे और भगवान के बीच में आ जाए उन सबको हटा दो, चाहे वो व्यक्ति फिर कितना भी प्यारा हो। संपूर्ण पवित्रता को जीवन में धारण करना है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करना है। जहां ब्रह्मचर्य है वहां ही वाणी में, वहां ही चरित्र में, वहां ही जीवन में तेज होगा, ओज होगा। टीचर्स से मुलाकात, कभी बाबा ने कहा था कि संसार में जो एक्टर्स है एक्ट्रेस है, संसार में जो भूमिका करने वाले, प्ले करने वाले, एक्टिंग करने वाले कलाकार है, वो लोग हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं। संसार में टीवी एक्टर्स, सिनेमा एक्टर्स क्या कर सकते हैं? हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, पर अशरीरी नहीं बना सकते। तुम अशरीरी बनाने वाले हो, तुम्हारी जो पवित्रता है वो देह की नहीं, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो देह का नहीं, आत्मा का है। बाप समझाते हैं आत्मा पतित से पावन, पावन से पतित कैसे बनती है, आप सुबह की मम्मा मुर्गी। क्या ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद भी पतित तो संकल्प नहीं आ रहे? विकारों की खींच, विकारों का आकर्षण तो नहीं हो रही? फिर से अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है, फिर से अपने ब्रह्मचर्य को तरोताजा करना है। हर दिन एक स्वयं से, एक बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। अमृत वेला एक स्वयं से और एक बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। सारे दिन भर ऐसा कोई संकल्प, बोल, कर्म, चलन, संबंध, संपर्क ना हो कि जिसमें विकार की संभावना हो। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइस, पॉसिबिलिटी ऑफ लस्ट, जो जो खिड़कियां खुली होंगी, जो जो झरोके होंगे जहां से विकार की वायु आए, सब बंद बंद होगी। सोचो डायमंड हॉल, इतने सारे दरवाजे हैं और बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, सारे दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खुला रखा केवल। हमने सोचा एक ही तो खुला है, बाकी तो सब बंद है, तो क्या होगा? आंधी, तूफान, धूल, मिट्टी आएगी नहीं आएगी? उस एक दरवाजे से आएंगे। मेरे जीवन का कौन सा वो एक दरवाजा खुला है जिससे पाप, विकर्म, अब्रह्मचर्य, वासना, काम नष्ट आ रही है, आ सकती है, आने की संभावना है? दरवाजा बंद कर दो। तो सारे दिन भर प्यूरिटी के संकल्प, प्यूरिटी की प्रतिज्ञा, प्यूरिटी की चर्चा, प्यूरिटी की बातें, प्यूरिटी का चिंतन, प्यूरिटी का लिखन। क्या पढ़ा जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं पढ़ रहा है कि जिससे मन में इम्प्योर इमेजिनेशन आ रहा है? ऐसा कुछ देख तो नहीं रहे हैं कि जो देखने के बाद मन ही मन कल्पना में विकार प्रवेश कर रहे हैं? ये दूसरी ज्ञान जो है, दूसरी पवित्रता की टिप्पणी। तीसरी है परमात्म प्रेम की टिप्पणी। जन्म जन्म तक मनुष्य को प्यार किया, क्या मिला मनुष्य को प्यार करके? माता, क्या मिला? दुख, अशांति, निराशा। जितना जितना मनुष्य को प्यार किया, हाथ में क्या आया? और क्यों मनुष्य प्यार करते एक दूसरे से? स्वार्थ, चाहे वो कोई भी हो। सुरमरमुनि सबकी हरीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति। चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, बच्चे हो, सब संबंधों में स्वार्थ भरा है। जब तक सभी संबंधों से विराग नहीं आ जाता, विषय विराग ईश्वरे अनुराग, तब तक भगवान से प्यार भी नहीं हो सकता। उसका प्यार अर्थात केवल उससे हो। अंग्रेजी में कहावत है, ही हू गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जिसने अपने जीवन में भगवान को दो नंबर में रखा है, अर्थात किसी भी नंबर में नहीं रखा है। किस नंबर में रखेंगे भगवान को? फर्स्ट। Bible में जगह लिखा है, आई माई गॉड एम अ जेलस गॉड, मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना। आई द लॉर्ड माई गॉड आई एम अ जेलस गॉड, मेरे अतिरिक्त किसी को प्यार किया तो देखना। एक अवगत वाणी है 85 या 86 की, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा राजी, अवगत मुरली है। जब बाप देखते हैं कि बच्चा या बच्ची किसी और का हाथ पकड़ के जा रही है तो बाप को बेचैनी होती है कि मुझे छोड़कर किसी देहधारी का हाथ पकड़, मैं इधर हजार भुजाओं के साथ खड़ा हूं, वो दो भुजाओ वाले के पास जा रही है। किसी मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप तुम्हें मदद देने के लिए खड़ा है हजार भुजाओं के साथ, तुम जाते हो दो भुजाओं वाले के पास क्यों? उत्तर बताओ। क्या उत्तर बताएंगे? कोई उत्तर है नहीं। एक उत्तर है जो हम कहना नहीं चाहते, वो उत्तर है बाबा आपसे हमारा प्यार कम है। कौन कहना चाहेगा ऐसा? हम कहते हमारा बहुत प्यार है, छाती फाड़ के बताओगे तो आप ही हो अंदर, बाकी वो मुरली और चिंतन और वो सब मत बताओ, आपसे बहुत प्यार है। परमात्मा बाप से प्यार करना अर्थात किससे प्यार? सात चीजें उसमें भी, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। कोई कहे बाबा से बहुत प्यार है, मुरली वरली मत बताओ, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार। बाबा तो बहुत अच्छा है पर ये जो ब्राह्मण परिवार है ये बहुत खतरनाक है। इससे तो वो लोग अच्छे थे अज्ञानी, मदद करते थे, ये लोग तो मदद भी नहीं करते, कहते क्यों मदद करे, हिसाब बन जाएगा मदद करने जाए तो। भक्ति मार्ग में हमने क्या कहा था, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान में आने के बाद ये निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ये जो परिवार भगवान से हमने कहा था कि तुम आना, तो हमको ये नहीं पता था कि साथ में परिवार भी लेकर वो आएगा। हमने तो तुमको पुकारा था कि आ जाओ छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, पर आकाश से परिवार भी सामने उतर के आएगा ये हमने सोचा ही नहीं था। बाबा कहते हैं ये प्रभु परिवार है। कोई कहता है मुझसे प्यार है, किसी माता को पड़ोसी महिला आकर कहे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा जो बेटा है ना बहुत खराब है, तो उससे दोस्ती बढ़ाओगी क्या? वो बेटे को बहुत गालियां देती है, बाबा आप बहुत अच्छे हो कर ये आपका परिवार बिल्कुल खराब। बाप कहते हैं मैंने एक एक को तुमको चुनकर लाया, तो साधारण उसकी गलती हो सकती है चुनाव में, फिर उसने गलती से चुन लिया हमको। यदि वो आकर कह दे मुझे वो बाजू वाले को चुनना था, यू आर द मिस्टेक, वो जो तुम्हारे बाजू बैठा था ना उसको एक्चुअली लेना था मुझे, उस गांव के जो बाजू का घर था वो माता को चुनना था, गलती से तुम आ गई, ऐसा उसने कह दिया तो नहीं कहेगा। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, राजयोग से प्यार। बाबा जो राजयोग सिखा रहे हैं, विज्ञान और योग, राज विद्या राजगुण पवित्र विदमोत्तम प्रत्यक्षावगमन धन्य सुसुकुम कर्तव्ययम्। हे अर्जुन, जो ज्ञान जो योग मैं तुझे सिखा रहा हूं वो राज विद्या है, साधारण नहीं, पवित्र को भी पवित्र करने वाली विद्या है ये। इसलिए निषदंत निदम प्रोक्तम, अपना ये जो शोक उसको हटा और इस ज्ञान और इस योग में चित्त को लगा, मन मना भव मध्या जी मुक्ता माम नमस्कुरु, मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें अनंतराम सर्व पापों के मोक्ष शिष्यों की मां सोचू, मैं तुझे सभी पापों से दुखों से मुक्त कर दूंगा। कम ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव द रेस्ट, सब मेरे पास आ जाओ। बाइबल में भगवान के वचन में आई शैल गिव द रेस्ट, जो थके हारे हैं थके मांदे हैं, कम ई ऑल हु आर लेबर हु आर वीरी एंड हु आर टायर्ड एंड आई शैल गिव द रेस्ट। बाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार। बाबा आप बहुत अच्छे होकर सेवा मत बताना कोई, जैसे ही सेवा बताती तो हमारे घर में शादी है, मेहमान है, फला है, ढला है, ये है वो है। एक बार बहुत सारी माताएं मधुबन में आई थी, बहुत समय पहले की बात, तो दादी ने कहा था, तब यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, दादी ने कहा था जो सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं, सेवा में कुछ देना चाहे। तो सभी माताओं ने कहा नहीं नहीं दादी, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे घर में बहुत ये नहीं है वो नहीं है, हम तो बहुत ही गरीब है। अच्छा चलो ठीक है। शाम को ये सारी माताएं मार्केट से लौट रही है, अपनी ननद, अपनी बहू और अपनी बेटी के लिए ये खरीद कर, वो खरीद कर और वो खरीद कर। तन मन धन श्वास समय संकल्प सब कुछ यज्ञ के लिए स्वाहा। सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, मनमत परमत परचिंतन ये सारे पंख तोड़ देना और एक श्रीमत से प्यार करना अर्थात बाप से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। बाबा आप बहुत अच्छे हो परंतु मधुबन में भी ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं। मधुबन में किस लिए गए थे, तपस्या करने बाबा से मिलने या परचिंतन करने? मधुबन में किस लिए गए थे, तपस्या करने या दूसरों के अवगुण देखने जो वहां रहते हैं? बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार। भगवान से प्यार बहुत है परंतु पवित्र हम रह नहीं सकते, पवित्र रहना नहीं चाहते, जब हो नहीं रहा तो बाप से प्यार कैसे? ये सारी बातें जब होगी तब कहा जाएगा भगवान से प्यार। तो तीसरी टिकलू टिकलू कौन सी करनी है? बाप से प्यार। आपस में कौन सी रो रही हम करनी है कि बाबा से प्यार कैसे बढ़ाए, जितना प्यार अभी मेरा है हाउ डू आई इंक्रीज लव फॉर गॉड, चिंतन का विषय है कि मेरा जितना भगवान से प्यार है वो डबल हो सकता है क्या? और हो सकता है तो कैसे, किस विधि से, क्या मैं करूं, कितना प्रेम बढ़ जाए, इतना प्रेम बढ़ जाए कि ऊपर से फूलों की वर्षा हो। अव्यक्त महावाक्य में बाबा की इन्वर्टेड कॉमा, अमृत रोना स्वयं को इतना परमात्मा प्रेम से भर दो कि सारे दिन भर किसी और का प्यार न खींचे। अब व्यक्त महावाक्य है बाबा से, कभी टीचर से मुलाकात, बाप को वो टीचर पसंद है जो बहुत प्यार से सेवा करती है, हम सभी टीचर एक रीति से, बाप को वो टीचर पसंद है जो बहुत प्यार से सेवा करती है और किसी के प्यार में फंस कर सेवा नहीं करती। दोनों ही चीजें, तीसरे चौथा भूराग के टुकड़ों टुकड़ों, ये पुराना पांडवा है अभी भी मुरली में रहना था। ममत्व हटा दो, दिल हटा दो, कब्रिस्तान है, विषय वैतरणी नदी है, रव रव नर्क है, कुंभी पाप नर्क है, बर्दाश्त था भी अभी आग लगी है संसार में चारों तरफ, स्ट्रेस टेंशन प्रॉब्लम समस्या है विकार, तुम रहन दे आग को बुझाने वाले। जो व्यक्ति संसार से जितना चिपका हुआ है वो रोना उसका कम हो जाएगा, जो व्यक्ति जितना संबंधों में फंसा हुआ है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा पति पत्नी मेरे मित्र मेरे संबंधी देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर, इस एक वाक्य को समझाने के लिए 80 साल की शिक्षा है। सार एक ही वाक्य है केवल, कौन सा? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर और मुझ बाप को याद कर। एक ही वाक्य उसको समझाना है केवल, उसके लिए 80 साल से शिक्षाएं चल रही है, मुरलिया साकार व्यक्त, सार एक ही है। देह ये जो देह के संबंध है, ये जो देह की इच्छाएं है, तृष्णाएं है, वासनाएं है, जो चकड़े हुए है आत्मा को, पकड़ बहुत गहरी है, बॉक्सिंग है, कल्पना कल परसों। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांग दर्शनम, हे अर्जुन चिंतन कर मनन कर साक्षी होकर देख, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, जरा में दुख है, व्याधि में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है, कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर अस्पतालों का चक्कर लगाओ और देखो उन गरीब पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, डायलिसिस पेशेंट को, कैसे तड़प रहे, बिलग रहे, रो रहे, पड़े हैं, कहां है सौंदर्य? वेयर इज द ब्यूटी? जो सारे देह के पीछे पागल है संसार में, देह ही केंद्र है, उसके इर्द गिर्द मीडिया, फिल्में, गीत, सब कुछ घूम रहा है, उपन्यास, साहित्य, नॉवेल्स, सब कुछ देह के इर्द गिर्द घूमता है। नहीं दे, वेर इज द ब्यूटी? जो बताया जा रहा है भ्रम है, चौधरी का चांद नहीं, आफत या आफताब नहीं, आफत ऐसा कहते हैं, आफताब बुढ़ापा। कई सारे शहरों में मां बाप उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जिसमें उनका घर है, उसी शहर के वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां पर उनके बेटे बेटी रहते हैं। फिर भी ममत्व छूटता नहीं, मोह छूटता नहीं, नष्ट मोह व्यक्ति बनता नहीं, पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, ये मेरा है, ये मेरी है, कौन मेरा और कौन मेरी, भूम मात्र हो, एक बाप के अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी सगा नहीं, लिख के रखना इस वाक्य को, इस संसार में एक भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई भी सगा नहीं, सब संबंध झूठ मिथ्या दिखावा आडंबर। जब संसार से निराग होगा तभी उस प्रभु से सच्ची प्रीत जुटेगी, संसार को भी प्यार कर रहे भगवान को भी एक ही मिलेगा। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। वैराग्य टिकलू टिकलू, संसार क्या है उसके अनित्य स्वभाव का चिंतन करना, मनन करना, देखना ये है संसार। एक अधिकारी जो कि बहुत वृद्ध था, बीमारी थी शरीर से यहां वहां से पस निकलता था, घाव थे, फोड़े थे। एक सड़क के किनारे पर भीख मांगता था और एक नौजवान यूथ कॉलेज बॉय रोज उसको देखता था और घृणा आती थी, सोचता था कैसा व्यक्ति है, मर के नहीं जाता, कितना जीवन से प्रेम है, ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है, इतनी जिवेशना। इतना होने के बाद में भी शरीर नहीं छोड़ता, फिर भी पकड़े हुए शरीर को, जीवन को। रोज देखता था कॉलेज जाते समय भिखारी भीख मांग रहा है, आज भी भीख मांग रहा है, कल भी भीख मांग रहा है, शरीर गल रहा है पर भिक्षा का पात्र छोड़ता नहीं। एक बार उसके पास जाकर कहता है कि तुम कितने दुख में हो, दर्द में हो, फिर भी तुम रोज आ जाते हो, तुमको घृणा नहीं आती है इस तरह के जीवन से, इससे तो मर जाना अच्छा है। वो भिखारी कहता है ये सब मुझे भी पता है पर मैं जिंदा इसलिए भी हूं कि दूसरे मुझे देखे और कुछ सीखे कि एक दिन वो भी ऐसा ही बनेंगे, उनको सिखाने के लिए मैं जीवित हूं। किस बात का गुमान, गर्व शारीरिक सौंदर्य का, जवानी का, पद का, पोजीशन का। सिकंदर ने जब शरीर छोड़ा था उसने एक अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं मरूंगा मेरी जो अर्थी उठेंगी मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर रखना ऐसे। लोगों ने कहा ऐसा क्यों, ऐसी तो कोई प्रथा है नहीं, यूनान की ऐसी कोई प्रथा नहीं। वो कहता है ऐसे ही रखना, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं निकल पड़ा था संसार को जीतने के लिए, संसार का सब कुछ पाने के लिए, और आज सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं, इसलिए मेरे हाथ कब्र से बाहर हो, अर्थी से बाहर रखना, दोनों ऐसे खाली हाथ जा रहा हूं। मेरा मुख क्यों टिकलो टिकलो, उसके बाद में तपस्या की टिकलो टिकलो। हमारा ये जीवन तप के लिए, ये जो शरीर मिला है इसको भोग में डुबोने के लिए नहीं है, तपस्या करने के लिए। ये तपस्वी जागो, स्वयं से बात करनी है, जो तपस्वी सो गया है अंदर उसको जगाना है, जाग जाग जाग। हरेक में वो तपस्वी अंदर बैठा है, सोया पड़ा है, पुकारना है उस तपस्वी को, हे तपस्वी जाग, तपस्या की मशाल जगानी है। ये ब्राह्मण जीवन यहां जन्म लिया और यहां इस जीवन में और संसार के लोगों के जीवन में क्या अंतर है, वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर दिव्यता कहां से, अलौकिकता कहां से। ये पुनर्जन्म है हमारा, ट्वाइस बॉर्न, द्विज है, ब्राह्मण अर्थात द्विज। तप करना है हमें, याद है हम शाम को अनुभव सुनाएंगे, पर एक बात याद आ रही है आज, हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी यहां पर आए थे बड़ौदा बटोरा कुछ ट्रेनिंग के लिए चार दिन, और यहां से श्रीमद् राजा चंद्र जी रायचंद भाई जिसको महात्मा गांधी ने कहा है अपने जीवन काल में, शायद यहीं पर कहीं आश्रम है उनका, राजा चंद्र क्या कहते हैं आप लोग, राजचंद्र, राजाचंद्र या रायचंद भाई जिनको कहा है, रायचंद्र महात्मा गांधी ने प्रयोग किया है, उनकी कुछ किताबें यहां से लेकर आए थे, दो तीन किताबें जैन धर्म की और उनकी तपस्या और वो सारा। सबसे पहली बार हमने वो पढ़ा था तब हम छोटे थे। इन राजाचंद्र या रायचंद भाई अपनी जीवन कहानी में एक सुंदर वृत्तांत लिखा है, उनकी शादी हुई थी और विकारों से उनको कैसे घृणा आ गई उसका वर्णन उन्होंने किया है। कैसे? पहले बहुत प्रसिद्ध थे, एक साथ 100 चीजें करते थे, उसको क्या कहते हैं? शतावधान, शतान। तो वो करते थे, वो सबसे वैराग आ गया हमको धीरे धीरे, नहीं तो उसमें भी वो बहुत आगे जा सकते थे, प्रसिद्ध हो सकते थे। पर जैसे जैसे आत्म तत्व आत्म बोध को जाना, वो सबसे हट गए। और कैसे एक दिन विकार से वैराग आ गया, काम से वैराग आ गया, उसका भी वर्णन उन्होंने लिखा है। और जीवन को तपस्वी बनाया। महात्मा गांधी ने किसी को भी अपना गुरु नहीं स्वीकार किया, ये एक ही मात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए उन्होंने कहा कि इज माई स्पिरिचुअल गाइड। पत्र द्वारा संवाद हुआ, गाइड किया गया। महात्मा गांधी ने एक बार लिखा कि विदेश में जब थे, एक पति पत्नी कितना प्यार है एक दूसरे का आपस में, तो उन्होंने रायचंद भाई को लिखा कि ये दोनों जो है मिसेस एलिजाबेथ या ऐसे कोई और वो मिस्टर, उन दोनों का आपस में बहुत प्यार है। उसने उस स्त्री की, उन्होंने उस स्त्री की इतनी महिमा की कि अपने पति की कितनी सेवा करती है ये। तो राजा चंद्र जी ने पत्र में वापस लिखा, एक नौकर भी तो अपने मालिक की जीवन भर सेवा करते हैं, उसका तो कभी कोई वर्णन नहीं करता। तो ये सेवा उससे कम हुई या ज्यादा हुई? तीन लगता है गांधी जी को। वो सोचते थे मेरी पत्नी या कोई आपस में कितना प्रेम है, पर यही प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत सारी अभिव्यक्तियां है प्रेम की। तो जीवन को तपाना है, तप नहीं, तपस्या नहीं। केवल जब आप भक्ति का आयोजन किया है तब नहीं, हर दिन भक्ति अपने स्वयं करनी है। कितने हुए? पांच, छठवा त्याग। त्याग की टिकलू टिकलू, वो हर चीज जो हमारे और भगवान के बीच बाधा है त्याग दो। त्याग में बल है, त्याग में शक्ति है। त्यागने के बाद हम कम नहीं बड़े होंगे। और त्यागने के बाद हमेशा खुशी नहीं होगी। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस। कितना लड्डू खाएगा? किसी को लड्डू पसंद है, कचौड़ी पसंद है, कितना खाएगा? गुलाब जामुन पसंद है, 10, 100। भोग की लिमिट है, बट देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। पर त्याग की, आत्मसंयम की कोई सीमा नहीं। कितना भी स्वयं को व्यक्ति संयमित कर सकता है, वो जैसे मुम्मा का जीवन है, त्यागमय जीवन है। सभी ने सुना होगा मम्मा का पहले का जीवन कैसा था, फैशनेबल, सब कुछ उसको पसंद था, डांस और ये। जैसे ही बाबा की बनी और जैसे ही बाबा ने कहा 24 घंटे का समय देता हूं, बताओ किससे शादी करनी है, एक सेकंड में निर्णय लिया। और यज्ञ की वेदिका में स्वयं के यौवन को और जीवन को सहारा कर दिया। वो सारी चीजें छोड़ दी जो पहले थी एक पल से। ऐसा होता है त्याग। एक पत्नी अपने पति से रोज कहती थी कि मेरा भाई जो है ना, उसको बहुत वैराग है, सोच रहा संन्यास में। पत्नी अपने पति से कह रही है कि मेरा भाई रोज कहता है मुझे वैराग आ गया है, मुझे संसार छोड़ना है, मुझे संन्यास लेना है। पति कहता है कितने साल से कह रहा है? वो कहता है 3 साल से वो कह रहा है कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे वैराग आ गया है, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे भगवान के प्रति अपने जीवन को अर्पित करना है। पति कहता है वैराग संन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है। तो पत्नी से कहती कैसे लिया जाता है? वो कहता है ऐसे, और निकल जाता है। बताने लगे नहीं मधु कि नहीं, इससे पूछो उससे पूछो इससे पूछो, क्या है तुम्हारा अनुभव, क्या है ठीक तो रहेगा, सुरक्षा सिक्योरिटी, बीमार हो गए तो कोई सेवाधारी मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे लिया जाता है ऐसे लास्ट गुण और शक्तियों के टिकलोटिक गुणों की और शक्तियों की संगम युग पर स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरना हर एक ब्राह्मण की ड्यूटी और कर्तव्य है। दूसरा कौन हमको शक्तिशाली बनाएगा, संसार का ज्ञान, संसार के लोग कभी नहीं। आत्मा को पावर से भरना है, स्पिरिचुअल पावर्स गुणों से भरना है, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, अदरवाइज नॉट।